हरे कृष्णा, स्वागत है सभी भक्तों का हमारे चैतन्य चरितामृत क्लास के छठे दिन। और अभी तक हमने 5 अध्याय पूर्ण किए हैं। पहले अध्याय का शीर्षक था मंगलाचरण, दूसरा अध्याय था चैतन्य तत्व निरूपण, तीसरा अध्याय हमने चर्चा किया था चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के 3 बाह्य कारण, चौथे अध्याय में हमने देखा चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के 3 गुह्य कारण, और 5वें अध्याय में हमने देखा था नित्यानंद तत्व निरूपण। और कल हमने देखा कि किस प्रकार से कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से एक विश्व की सृष्टि किस प्रकार से होती है और वहाँ पर कौन कौन से विष्णु कहाँ 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 पे कौन सा रोल अदा करते हैं इसके बारे में उन्होंने बताया। तो सर्वप्रथम वो बताते हैं कि एक परव्योम करके धाम है जहाँ पर माया कभी पहुँच नहीं सकती। परव्योम के भी उन्होंने बताया कि वैकुंठ और उसके आगे चल के द्वारका, मथुरा और गोलोक, ऐसे 3 विभाग होते हैं और गोलोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। परव्योम के बाहर एक ब्रह्म ज्योति का प्रकाश होता है, उसके बाहर कारणोदक सागर, कारणोदक होता है मतलब कारण सागर, उसमें कारणोदक शय विष्णु शयन करते हैं। उनके सांस से और उनके रोमचिद्रों से कई सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और हर एक ब्रह्मांड में एक विष्णु उनका अंश जाता है जिन्हें कहते हैं गर्भोदक शाही विष्णु। जो ब्रह्मांड है वह आधा जल से भरा हुआ होता है और उसके ऊपर अनंत शेष के ऊपर गर्भोदक शाही विष्णु शयन करते हैं। उनके नाभि से एक कमल निकलता है, कमल की उत्पत्ति होती है, जिस कमल की जो दंडा है उसमें 14 भुवन होते हैं और उसके ऊपर ब्रह्मा जी उनका जन्म होता है और ब्रह्मा जी फिर सारी सृष्टि करते हैं। 14 भुवनों के बीच में जो 7 समंदर होते हैं उसमें से एक होता है श्वेत द्वीप, उसे कहा जाता है, और उसमें क्षीरोदक शाही विष्णु वो शयन करते हैं। सारे देवी देवताओं को जब समस्या आती है, जब भगवान को वो पुकारते हैं, तो वो इस क्षीरोदक शाही विष्णु इनके पास वो जाते हैं और वही क्षीरोदक शाही विष्णु सारे जो है जीवात्माएं उनके अंदर परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा ये सारे जो है वो अंश कला कला, इनके अंशों के अंश ये जो है ये किसके है, ये सब महासंकर्षण इनके अंशों के अंशों के अंश है और जो महासंकर्षण है वो भी जो है वो नित्यानंद प्रभु इनके अंश है। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का महत्व हमने देखा। और कविराज गोस्वामी फिर इसके आगे 6 अध्याय प्रारंभ करते हैं। 6 अध्याय का शीर्षक है अद्वैत तत्व निरूपण। अद्वैताचार्य इनका तत्व, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि पंच श्लोके कहिल श्री नित्यानंद तत्व, श्लोक द्वय कही अद्वैताचार्य र महत्व। हमने देखा था कि 6 श्लोकों में चैतन्य तत्व निरूपण किया मंगलाचरण के, उसके बाद 5 श्लोकों में नित्यानंद तत्व निरूपण किया और अभी वो कहते हैं कि मैं जो मंगलाचरण के 2 श्लोक हैं 12वां और 13वां उसमें मैं अद्वैताचार्य इस तत्व का निरूपण करने जा रहा हूं। महाविष्णु जगत्कर्ता मायया यह सृजत्यदः तस्यावतार एवायम अद्वैताचार्यम ईश्वरः। यह है मंगलाचरण का हमारा 12वां श्लोक कि जो महाविष्णु है वो माया की मदद लेके इस सारी जगत की सृष्टि करते हैं और उनके ही जो अवतार है अद्वैताचार्य उनको मैं प्रणाम करता हूं। अद्वैतम हरिना द्वैतात आचार्यम भक्ति शमसनाथ भक्तावतार मीशम तम अद्वैताचार्यम आश्रये। उनके नाम के बारे में भी यह हमारा 13वां श्लोक है मंगलाचरण का। अद्वैतम हरिना द्वैतात, क्योंकि ये भगवान हरि से अभिन्न है इसलिए उनका नाम है अद्वैत, और क्योंकि ये भक्ति का मार्ग का प्रचार और प्रसार करते हैं इसलिए इनका नाम है आचार्य। ऐसे जो भक्त के अवतार है श्री अद्वैताचार्य उनको मैं प्रणाम अर्पण करता हूं, उनकी आश्रय में ग्रहण करता हूं। महाविष्णु सृष्टि करेन जगदाधिकार्य तार अवतार साक्षात अद्वैत आचार्य। जो महाविष्णु जो सृष्टि करते हैं सारे उस ब्रह्मांडों का निर्मिति का भार उनके ऊपर है और जो अद्वैताचार्य है वो उनके साक्षात अंश ही है। जगत मंगल द्वैत मंगल गुण धाम मंगल चरित्र सदा मंगल यार नाम। या द्वैताचार्य के जो बारे में सारी चीजें मंगलमय है, जगत मंगल अद्वैत सारे जगत को मंगलकारी बना देते हैं, मंगल गुण धाम सारी मंगल मतलब सारे शुभ गुणों के वो धाम है, मंगल चरित्र सदा उनका चरित्र सारे शुभ लक्षणों से अंकित रहता है, और मंगल यार नाम जिनका नाम भी जो है वो मंगलकारी है, इसलिए जो भी उनका नाम भी लेता है उसका जीवन मंगलमय बन जाता है, ऐसा कविराज गोस्वामी जो है वो बताते हैं। तो इस प्रकार से हमें इन मंगलमयी अद्वैताचार्य के बारे में चर्चा करने का आज जो है वो सुअवसर प्राप्त हुआ है। महाविष्णुर अंश अद्वैत गुण धाम ईश्वरे अभेदते अद्वैत पूर्ण नाम। सारे गुणों का आगार महाविष्णु के ये प्रमुख अंग है, उनका पूरा नाम अद्वैत है क्योंकि वो सभी प्रकार से भगवान से अभिन्न है। पूर्वे ऐसे कैल सर्व विश्वर सृजन अवतारी कैल एबे भक्ति प्रवर्तन। जिस प्रकार से महाविष्णु मतलब कारणोदक्ष विष्णु हमने देखा कि जिस प्रकार से उन्होंने पहले सृष्टि की थी अभी वो भक्ति मार्ग का प्रवर्तन कर रहे हैं, इसलिए वो अभी आचार्य नाम से जाने जाते हैं। भक्ति उपदेश विनु तारना ही कार्य अतएव नाम है अद्वैत आचार्य। उनके पास भक्ति की शिक्षा देने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है, केवल एकमात्र कार्य करते हैं वो भक्ति का शिक्षा और उसका प्रचार करते हैं, इसलिए उनका नाम होता है अद्वैत आचार्य। वैष्णवेर गुरु तेह जगतेर आर्य द्वि नाम मिलन होइला अद्वैत आचार्य। वे समस्त भक्तों के गुरु है और संसार के सबसे आदरणीय व्यक्ति है, और इन दोनों नाम का जब योग होता है तब नाम बनता है वो है अद्वैत आचार्य। यहार तुलसी जले यहार हंकारे स्वगण सहित चैतन्य अवतारे। हमें पता है कि किस प्रकार से उन्होंने तुलसी के जल और तुलसी के दल और गंगा का जल इनसे उन्होंने अपने शालिग्राम की पूजा की थी, और उन्होंने हुंकार दी थी, उन्होंने पुकारा था भगवान को, और इसलिए उनके हुंकार से चैतन्य अवतारे चैतन्य महाप्रभु का जो है वो अवतरण हुआ था। यार द्वारा कैल प्रभु कीर्तन प्रचार यार द्वारा कैल प्रभु जगत निस्तार। इनके द्वारा महाप्रभु ने जो है वो कीर्तन का प्रचार इस सृष्टि में करवाया है और सारे जगत का उन्होंने उद्धार अद्वैताचार्य की मदद से किया हुआ है। आचार्य गोसाईर गुण महिमा अपार जीव कोटि कोथाए पाई बेकतार पार। अद्वैताचार्य इनके गुण महिमा जो है वो बहुत अपार है, असीमित है, फिर मेरे जैसा क्षुद्र जीव उनका ओर छोर कैसे नाप सकता है। आचार्य गोसाई चैतन्य मुख्य अंग आर एक अंग तार प्रभु नित्यानंद। चैतन्य महाप्रभु ये जो भक्ति का प्रचार कर रहे थे तो उनके दो प्रमुख शिष्य दो प्रमुख लोग थे, जो दो दो प्रमुख अंग कहा जाता है, एक थे श्री अद्वैताचार्य और दूसरे श्री नित्यानंद प्रभु। माधवेंद्र पुरी इहो शिष्य ए ज्ञाने आचार्य गोसाई रे प्रभु गुरु करी माने। चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी, और अद्वैताचार्य जो थे वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। मतलब चैतन्य महाप्रभु के गुरु बंधु हुए वो। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु हुए ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु है माधवेंद्रपुरी, और माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे अद्वैताचार्य। तो इसलिए वो सीनियर थे, काफी उम्र में भी बड़े थे और अपने गुरु के गुरु बंधु थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा उन्हें अपने गुरु का ही दर्जा देते थे, उनका आदर सम्मान करते थे। लौकिक लीला ते धर्म मर्यादा रक्षण स्तुति भक्ते करण तार चरण वंदन। कि धर्म के सिद्धांतों की मर्यादा बनाए रखने के लिए चैतन्य महाप्रभु उनकी स्तुति करते थे, उनका गान करते थे और उनके चरण कमलों की हमेशा वंदना किया करते थे। चैतन्य गोसाई के आचार्य करे प्रभु ज्ञान अपना के करें तार दास अभिमान। लेकिन अद्वैताचार्य को यह पसंद नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु मुझे गुरु माने, इसलिए अद्वैताचार्य हमेशा चैतन्य महाप्रभु को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करते थे और अपने आप को हमेशा क्या मानते थे, वो मैं दास हूँ, करे दास अभिमान। तो महाप्रभु के दास के रूप में वो अपने आप को जानना चाहते थे। कृष्ण दास अभिमानी ये आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख न है तार एक बिंदु। अभी ये जो दास अभिमान है, मतलब भगवान का दास कहा जाना, उसके बारे में पूरा कविराज गोस्वामी और जो अद्वैताचार्य की सोच थी उसका वर्णन करते हैं कि कृष्ण दास ये अभिमान जो है मुझे कृष्ण दास का, ये एक आनंद के सागर के समान है और कोटि कोटि गुणा यदि ब्रह्म सुख को मल्टीप्लाई किया जाए तो भी ये आनंद सिंधु का एक बिंदु भी नहीं हमें मिल सकता। तो इसलिए ये ब्रह्मानंद जो है वो बहुत ही छोटा है। और अभी कविराज गोस्वामी अलग अलग उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से ये जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं वो भी अपने आप को भगवान कृष्ण के दास बनकर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। परम प्रेयसी लक्ष्मी हृदये वसती, तेहो दास्य सुख मागे करिया मीनती। वो कहते हैं कि ये परम प्रेयसी लक्ष्मी देवी भगवान के वक्षस्थल पर निवास करती है, लेकिन भी फिर भी वो दास्य सुख मांगे करिया विनती। वो भी दास्य सुख चाहती है और हमें पता है कि किस प्रकार से वो भगवान विष्णु की चरण सेवा करने में अपने आप को खुशहाली मानती है। और इस प्रकार से भगवान के अलग अलग बड़े बड़े भक्त ब्रह्मा, शिवजी, नारद, सुखदेव गोस्वामी, सनत कुमार आदि सब जो है वो भगवान के दास के रूप में ही अपने आप को प्रसन्न मानते हैं। ये सब उनके उनको तो छोड़ दो। नित्यानंद अवधूत सबाते आगल, चैतन्य रदास प्रेमे होइला पागल। इन सब में श्रेष्ठ है अग्रगणी। आगल का अर्थ होता है सबसे शिरोमणि, सारे सारों में शिरोमणि है ये नित्यानंद प्रभु अवधूत। वो भी चैतन्य महाप्रभु के अपने आप को दास के रूप में सदैव प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो बाकी सारे भक्तों का वो वर्णन करते हैं और ये सब अपने आप को दास के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि कृष्ण प्रेम एक अपूर्व प्रभाव, गुरु सम लघु के कराय दास्य भाव। कि कृष्ण प्रेम का एक अपूर्व स्वभाव ही है। क्या है कि कृष्ण से जो बड़े भी है, कृष्ण के समवयस्क भी है और कृष्ण से छोटे भी है, तो भी वो कृष्ण के दास ही बन के हमेशा रहना चाहते हैं। और कविराज गोस्वामी कहते हैं इहर प्रमाण सुन शास्त्रेर व्याख्यान, महद अनुभव या ते सुदृढ़ प्रमाण। कि इसके प्रमाण के लिए शास्त्रों में कई सारे उदाहरण आते हैं जो यही पुष्टि देते हैं कि दास्य अभिमान ये जो है वो बहुत बड़ा चीज है। भगवान से बड़ा बनना ये कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान का दास बनना ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। शुरुआत ही वो करते हैं अन्य का कथा व्रज नंद महाशय, तार सम गुरु कृष्ण आर को है नए। कि बाकी को तो सब छोड़ दो, जो नंद महाराज है वो कृष्ण के सबसे बड़े जो है वो बड़े भक्त, जो जो गुरु वर्ग मतलब कृष्ण से जो बड़े हैं उनमें सबसे बड़े यदि कोई है तो वो है नंद महाराज, नंद महाशय। शुद्ध वात्सल्य ईश्वर ज्ञान नहीं तार, इहा के तहा के ही प्रेमे कराए दास्य अनुकार। कि शुद्ध वात्सल्य की वो मूर्ति है लेकिन फिर उनमें जो है वो कृष्ण के प्रति ईश्वर ज्ञान नहीं है कि ये मेरा बेटा ईश्वर है, ऐसा बिल्कुल ज्ञान नहीं है उनके अंदर। शुद्ध वात्सल्य भाव है लेकिन वो फिर भी भगवान के सेवा ही हमेशा करते रहते हैं, वो है उनका दास अभिमान। और बाकी सारे यदि हम लोग, ये तो हो गए गुरुवर्ग, अभी सखा वर्ग यदि देखे, श्रीदामादि व्रजयत सखर निचय, ऐश्वर्य ज्ञान ही न केवल सख्यमय। जो भगवान के सारे सखाए हैं श्रीदामादि, ये जिनमें श्रीदामा मुख्य है, ये सारे शुद्ध सख्य प्रेम रखते हैं और इनमें भी भगवान के प्रति ऐश्वर्य का कोई ज्ञान नहीं है। कृष्ण संगे युद्ध करे स्कंदे आरोहण, तारदास्य भाव करे चरण सेवन। ये कभी भगवान के कंधों के ऊपर खड़े हो जाते हैं और युद्ध में भगवान को कभी कभी हरा देते हैं, लेकिन फिर भी दास्य भाव रखते हुए वे कई बार भगवान की चरण सेवा करते हुए पाए जाते हैं। अभी हम यदि भगवान की प्रेयसी गण देखें, कृष्ण प्रेयसी व्रज यत गोपी गण, यार पद धूलि करे उद्धव प्रार्थन, कि व्रज की जो गोपियां हैं वो गोपियां इतनी भगवान की प्रियतमा भक्त है कि उद्धव जैसे भक्त भी इनके पद धूलि चाहते हैं। यहां सबर ऊपर कृष्ण प्रिय न ही आन, ताहर अपना के करे दासी अभिमान। भगवान के प्रिय भक्तों में इन गोपियों के ऊपर कोई और भक्त है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो गोपियां भी अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की दासी बन के ही प्रस्तुत करती है, ये है उनका दासी अभिमान। ये तो सब हो गया। अभी अलग अलग द्वारका की रानियों को भी देखो, द्वारका ते रुक्मिणी दीयते क महिषी, तहाराओ अपना के माने कृष्ण दासी। द्वारका के अलग अलग रानियों को भी यदि गणना करें उसमें से सर्वश्रेष्ठ होती है रुक्मिणी, और रुक्मिणी भी अपने आप को भगवान कृष्ण की दासी के रूप में हमेशा प्रस्तुत करती है। और अभी निष्कर्ष देने से पहले वो कहते हैं कि ये सब भक्त गणों का उन्होंने किया, कृष्ण से वरिष्ठ हो गए, नंद महाराज कृष्ण से इक्वल हो गए, गोपियां कृष्ण के प्रियतम भक्त हो गए, गोपी द्वारका की रानियां हो गई। अन्य की कथा बल देव महाशय, यारो भाव शुद्ध सख्य वात्सल्यादिमय। एक ऐसे भगवान है बलदेव, बलदेव महाशय, बाकी सब की तो बात छोड़ दो, जो शुद्ध सख्य रस, वात्सल्य रस, प्रेम रस, सारी भावनाओं से वो पूर्ण है। तेहो अपना के करें दास भावना, कृष्ण दास भाव की चो आछे को न जाना। वे भी अपने आप को भगवान के दास के रूप में ही समझते हैं। निसंदेह ऐसा कौन होगा जो भगवान कृष्ण का दास होने का यह भाव न रखता हो। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो दास बनना भगवान का, ये सबसे बड़ी जो है वो उपाधि है। पिता माता गुरु सखा भाव के निर्णय, कृष्ण प्रेमेर स्वभाव दास्य भाव से करे। भगवान कृष्ण के कोई, चाहे वो माता हो, पिता हो, गुरु हो या सखा हो, इन सब में कृष्ण का प्रेम होता ही है, लेकिन कृष्ण प्रेम का ऐसा स्वभाव होता है कि इन सब के साथ साथ उनमें दास्य भाव भगवान का कूट कूट के जो है वो भरा हुआ हमेशा रहता है। तो ये है भगवान के दास्य भाव की महिमा। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य रदास मुई चैतन्य रदास, चैतन्य रदास मुई चैतन्य रदास। चार बार वो कहते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं, दास हूं, दास हूं, दास हूं। तो इस प्रकार से अपने आप को दासों के दास के रूप में कविराज गोस्वामी जो है वो हमेशा प्रस्तुत कहते करते हैं, और उनका दास अभिमान यहाँ पे भूरी भूरी रूप से प्रकट होता है। कृष्ण साम्य नहि तार माधुर्य आस्वादन, भक्त भावे करे तार माधुर्य चरवण। जो अपने आप को कृष्ण के समान मानते हैं वे कृष्ण की मधुरता का कभी भी आस्वादन नहीं कर सकते। हम लोग देखते हैं संसार में लोग अपने आप को कई बार भगवान के रूप में प्रकट करते हैं कि मैं भगवान हूं, तो भगवान बनना तो छोड़ दो, भगवान के सम कोई जो व्यक्ति होता है वो कभी भगवत प्रेम का आस्वादन नहीं कर सकता। और इस आस्वादन का, इस जो प्रेम है इसका आस्वादन केवल दास्य भाव में ही किया जाता है या भक्त भाव में ही किया जाता है। अन्यर आछु कार्य अपने श्री कृष्ण, अपन माधुर्य पाने होइला सतृष्ण। और की क्या बात है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अपने माधुर्य का जब आस्वादन करना चाहते हैं, स्वमाधुर्य आस्वादित करे न यतन, भक्त भाव विनु न है तहा आस्वादन। जब वो अपने स्वयं की मधुरिमा का जब आस्वादन करना चाहते हैं तब वो भी भक्त का ही भाव स्वीकार करके आते हैं, क्योंकि अन्य किसी प्रकार से उस प्रेम का आस्वादन नहीं किया जा सकता। भक्त भाव अंगीकरी हैला अवतीर्ण, श्री कृष्ण चैतन्य रूपे सेई भावे पूर्ण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी भक्त का भाव का स्वीकार किया और सभी प्रकार से वो भगवान चैतन्य के रूप में अवतरित होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि दास्य अभिमान होना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूं, और भगवान का जो भक्त होता है वही भगवान की मधुरता का आस्वादन कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। और जो भगवान के सबसे भक्त भक्तों में श्रेष्ठ भक्त है। मूल भक्त अवतार श्री संकर्षण भक्त अवतार तहि अद्वैते गणन, जो मूल भक्त अवतार है वो है संकर्षण, और अद्वैताचार्य की भी गणना जो है वो भक्तों में की जाती है। अद्वैताचार्य गोसाई रा महिमा अपार, यहाँ रे हुंकारे कैला चैतन्य अवतार, उनकी भक्ति की इतनी महिमा है कि केवल उन्होंने पुकारा और चैतन्य महाप्रभु चले आए इस भौतिक संसार में। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो है वो अवतार कराया। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी निष्कर्ष देते हुए कहते हैं कि एई दुई श्लोके कहिला अद्वैत तत्व निरूपण पंच तत्व विचार किचु सुन भक्त गण। इस प्रकार से 12वें और 13वें श्लोक, ये मंगलाचरण के 2 श्लोकों में मैंने अद्वैत तत्व का निरूपण किया है, अभी आप पंच तत्व का निरूपण मुझसे सुनिए। ऐसा कहे के चैतन्य कविराज गोस्वामी अपना 7वां अध्याय प्रारंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है पंच तत्व निरूपण। और पंच तत्व निरूपण में हम लोग देखते हैं कि जो मंगलाचरण का 14वां श्लोक है, उस मंगलाचरण के 14वां श्लोक कविराज गोस्वामी यहाँ पे नमूद करते हैं। पंच तत्व अवतीर्ण चैतन्य रसंगे पंच तत्व ला करे न संकीर्तन रंगे। ये 5 तत्वों में चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, और इन 5 तत्वों को, मतलब ये 4 संज्ञाओं को लेके चैतन्य महाप्रभु धरातल पर आए, और इन सब को लेके अपने हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को उन्होंने फैलाया। कौन है ये 5 तत्व पूरे? पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। ये 5 तत्वों को प्रणाम करते हुए कविराज गोस्वामी कहते हैं कि पंचतत्वात्मकं कृष्णं, ये है भगवान श्री कृष्ण 5 तत्वों में जो भक्त, भक्त के विस्तार, भक्त के अवतार, शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति, इनमें प्रकट होते हैं। ये है 5 तत्व, यहाँ पर आपको देखना होगा ये इस तस्वीर में, और यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा आगे वाले श्लोक। स्वयं भगवान कृष्ण एकले ईश्वर अद्वितीय नंदात्मज रसिक शेखर, कि जो समस्त आनंद के आगार है, कृष्ण परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही कृष्ण न तो उनके बड़ा कोई है न उनके तुल्य कोई है, जो नंद आत्मज, जो नंद महाराज के सुपुत्र है, रसिक शेखर है, वही श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वर है। लेकिन वो ईश्वर अभी किस रूप में आए हैं? श्री कृष्ण अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य श्री परिकर गण संगे सब धन्य। वे भगवान कृष्ण अपने समान यशस्वी शाश्वत संगियों के साथ अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। एकले ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर भक्त भावमय तार शुद्ध कलेवर। ये 5 तत्वों में केवल 1 तत्व है जो ईश्वर श्री चैतन्य महाप्रभु एकमात्र भगवान है, जो भाव विभोर होकर भक्त बन के आए हैं, और उनका शरीर दिव्य है और भौतिक रूप से कभी कलुषित नहीं होता है। कृष्ण माधुर्य एक अद्भुत स्वभाव अपना आस्वादित कृष्ण करे भक्त भाव। जो कृष्ण मधुरिमा है उसका एक अद्भुत स्वभाव होता है, और उसका अद्भुत स्वभाव क्या है कि यदि आपको उसका आस्वादन करना है तो आपको भगवान का भक्त ही बनना होगा। तो देखिए, कृष्ण प्रेम का आस्वादन जो है वो केवल भक्त, भगवान के भक्त बनकर ही किया जा सकता है। इस संसार में फालतू में लोग भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान स्वयं अपना आस्वादन करने के लिए भक्त के रूप में आते हैं। तो सबसे पहला होता है पंच तत्व, मैं आपको ये श्लोक समझाता हूँ। यहाँ पे आपको ये श्लोक पता होगा, ये 5 तत्व कौन है? हम लोग बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। ये 5 तत्व है। चैतन्य महाप्रभु सबसे बीच में खड़े रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के लेफ्ट साइड में नित्यानंद प्रभु, उनके लेफ्ट साइड में अद्वैताचार्य, सॉरी चैतन्य महाप्रभु के राइट साइड में नित्यानंद प्रभु, उनके राइट साइड में अद्वैताचार्य, चैतन्य महाप्रभु के लेफ्ट साइड में इमीडिएट रहते हैं गदाधर पंडित, और उनके भी लेफ्ट साइड में रहते हैं श्रीवास ठाकुर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। तो अभी जो पंच तत्वात्मकम कृष्ण वो जो श्लोक हम बोले हैं तो उसमें उसमें आप देखिए पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप, तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो भक्त रूप है, नित्यानंद प्रभु भक्त स्वरूप है, अद्वैताचार्य भक्त अवतार है, श्रीवास ठाकुर भक्त है और गदाधर पंडित भक्त शक्ति है। तो ये यहां पर पंचतत्व का वर्णन हमें मिल सकता है। तो भक्त स्वरूप है नित्यानंद प्रभु, भक्त अवतार है अद्वैताचार्य, और ये जो पांच है तो इसमें से ये जो तीन है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, आप ऐसे पांच निकाल सकते हैं यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो जो जय श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र आप पूरा समझ सकते हैं उसमें से। और ये पांच तत्व है पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो इसमें भी ये जो तीन है एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन दुई प्रभु से वे महाप्रभु चरण, एक है महाप्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु और दूसरे दो है प्रभु। कौन है ये दो प्रभु? अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु। ए तीन तत्व सर्व आराध्य करिमानी चतुर्थे ये भक्त तत्व आराधक जानी। तो उसमें से जो ये जो तीन है ये सर्व आराध्य है, पंच तत्व में ये तीन तत्व आराध्य तत्व है और जो बचे हुए दो तत्व है वो आराधक तत्व है। तीन हो गए आराध्य, आराध्य मतलब पूजनीय, सब लोग उनकी पूजा करें, वो भगवत तत्व है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य। ये तीन तत्व सर्व आराध्य करिमानी, इनको आराध्य मानना चाहिए, और जो बचे हुए दो है ये तत्व भक्त तत्व आराधक जानी, इनको आराधक समझना चाहिए। गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर इनको भगवान के आराधक समझना चाहिए। श्रीवास आदि यत कोटि कोटि भक्तगण शुद्ध भक्त तत्व मध्य तांसवार गणन, और जो श्रीवास ठाकुर है वो है शुद्ध शुद्ध भक्त भगवान के, और गदाधर पंडित होते हैं उन्हें अंतरंग भक्त, ये भगवान की शक्ति कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये पंच तत्व समझना बहुत आवश्यक है। मैं पुनः एक बार बताता हूं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, ये पंच ये पांच तत्व हो गए। और उनमें भी अभी ये यदि पांच आप लोग ऐसे पांच दंडे निकाल के उनके नाम लिख सकते हैं, बीच में चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के राइट साइड में नित्यानंद प्रभु, उनके राइट साइड में अद्वैताचार्य, चैतन्य महाप्रभु के लेफ्ट साइड में गदाधर पंडित, उनके लेफ्ट साइड में श्रीवास ठाकुर। तो अभी पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप, स्वरूपकम नित्यानंद प्रभु भक्त स्वरूप, भक्तावतारम अद्वैताचार्य भक्तावतार, भक्ताख्यम श्रीवास ठाकुर भक्त शुद्ध भक्त, और नमामि भक्त शक्ति कम गदाधर पंडित भक्त शक्ति जो श्रीमती राधा रानी के ही अंश माने जाते हैं, ये हो गए भक्त शक्ति। तो उसमें से ये जो तीन है ये तीन होते हैं आराध्य, और ये जो दो होते हैं वो है आराधक। तो दो है आराधक तत्व और तीन है आराध्य तत्व। तो इस प्रकार से ये सब मिलके बनते हैं पंच तत्व। सही पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया पूर्व प्रेम भंडारे रह मुद्रा उघाड़िया। पूर्व में जो प्रेम का जो भंडार था वो उसको लॉक किया गया था, उस लॉक को इस चैतन्य महाप्रभु ने और इन पंच तत्वों ने अनलॉक कर दिया है इस पृथ्वी पर। और पांचे मिली लूटे प्रेम करे आस्वादन यत यत पिय तृष्णा बाढ़े अनुक्षण। ये जो कृष्ण प्रेम का जो भंडार है ये पंच तत्व मिल के इसको लूटते हैं, वो स्वयं आस्वादन करते हैं पीते हैं और फिर उनकी तृष्णा और बढ़ती रहती है, और अभी तृष्णा बढ़ती है तो फिर ये कृष्ण प्रेम को और पीते हैं। पुनः पुनः
पियाइया हयम हमत नाचे कांदे हासे गाय ये छे मदमत। फिर ये पंचतत्व क्या करते हैं, पुनः पुनः पीते हैं, पीते से उनकी और प्यास बढ़ती है, और प्यास बढ़ती है तो ये और पीते हैं, और पीते 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 इस प्रकार से मदमत्त हो जाते हैं। नाचे कांदे हासे गाय, फिर वो नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, इस प्रकार से मदमत्त बन जाते हैं। और अभी मदमत्त बनने के बाद अभी ये स्वयं के पास नहीं रखते, इस कृष्ण प्रेम को दूसरों में भी बांटते हैं। पात्र पात्र विचार नहीं, नहीं स्थान स्थान, ये यहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। वो देखते नहीं कि कोई पात्र है या पात्र नहीं है, ये स्थान उचित है या ये स्थान अनुचित है, कुछ नहीं देखते है। यही यहाँ पाए, जो जहां मिल गया तहां कोरे प्रेम दान, उसको वो प्रेम का दान प्रदान करते हैं, दान देते हैं। लुटिया खैया दिया भंडार उजाड़े, आश्चर्य भंडार प्रेम शत गुण बाड़े। कृष्ण प्रेम का भंडार कैसा है, ये लूट रहे हैं, स्वयं लूटते हैं, खैया खाते हैं, और दिया ये बांटते भी रहते हैं, और ये भंडार खोल दिया है, इस प्रकार से खोल दिया है, लेकिन ये आश्चर्यमय भंडार है। इस भंडार का आश्चर्य क्या है कि ये सब खाओ बांटो और खोल दो, लेकिन फिर भी ये प्रेम जो है इसके अंदर का 100 गुना बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। वाह रे, कैसा प्रेम का ये भंडार है। उछलीला प्रेम वन्या चौधरी के बेड़ा, स्त्री वृद्ध बालक युवा सबारे डुबाए। ये उछल दिया है कृष्ण, ये भगवत प्रेम की बाढ़ अभी ये चौधरी के बेड़ा है, 14 भवन में भी आ रही है, और स्त्री वृद्ध बालक युवा सब लोगों को ये कृष्ण प्रेम की बाढ़ डुबा रही है। सज्जन दुर्जन पंगु जड़ अंधगण, प्रेम वन्याय डुबाईला जगते रजन। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन से सारे विश्व को आप्लवित कर दिया है, डुबा दिया है, जिसमें सज्जन हो, दुर्जन हो, लंगड़े पंगु व्यक्ति हो, जड़ गण हो, धूर्त लोग हो, अंधे हो, कोई भी हो, इन सबको इस कृष्ण प्रेम ने डुबा दिया है। जगत डूबिला जीवेर हईल बीज नाश, तहां देखी पांच जनेर परम उल्लास। जब ये पंच तत्व के पांच सदस्य जब देखते हैं कि संसार में भगवत, ये संसार पूरे भगवत प्रेम में अभी ओतप्रोत हो गया है, डूब गया है, और जीवों के पाप का बीज नष्ट हो गया है, तब इन्हें बहुत आनंद हो जाता है। लेकिन अभी सब लोग तो डूब रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कृष्ण प्रेम में डूब नहीं रही है। कृष्ण प्रेम की बाढ़ उन लोगों को अभी तक स्पर्श नहीं कर रही है। कौन है ये लोग? मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्की कगण, निंदक पाषंडीय तपोड़िया अधम। सही सब महादक्ष धा पलाइला, सही वन्या तांस बारे छुड़ीते नारिला। कि मायावादी लोग, सकाम कर्मी लोग, तार्किक लोग, निंदा करने वाले लोग, अभक्त लोग, निम्न श्रेणी के लोग, पाषंडी, ये सब जो है वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन से हमेशा दक्षता से दूर भागते हैं, इसलिए इनको ये कृष्ण प्रेम स्पर्श नहीं करता। यह देखा चैतन्य महाप्रभु ने कि मायावादी लोग इससे, इस कृष्ण प्रेम रूपी वन्या से अभी दूर भाग रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं कि मेरी इच्छा तो यह थी कि भगवत प्रेम में हर एक व्यक्ति डूब जाए, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इससे भाग रहे हैं, इसका उपाय मुझे अभी निकालना होगा। और चैतन्य महाप्रभु उसका उपाय यह निकाला कि स्वयं उन्होंने संन्यास ले लिया। कि इस प्रकार से कविराज गोस्वामी कहते हैं कि 24 साल तक चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में रहे, और 25वें साल उन्होंने संन्यास आश्रम का स्वीकार कर लिया। ऐसे लोगों को कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए, जो लोग अभी तक कृष्ण भक्ति के गंध को भी स्वीकार नहीं कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया, तो सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। फिर जो उनसे बचते थे वो तार्किक लोग भी अभी उनकी आलोचना करते थे, वो भी अभी चैतन्य महाप्रभु के सामने जाके आत्म समर्पण करने लगे। अपराध क्षमाइला डुबिला प्रेम जले, केबा एड़ा इबे प्रभुर प्रेम महा जले। चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको अभी क्षमा कर दिया और सबको भक्ति के सागर में पुनः डुबो दिया। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है वह सबा निस्तारिते प्रभु कृपा अवतार सबा निस्तारिते करे चातुरी अपार। चैतन्य महाप्रभु समस्त पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए और उन्होंने माया के प्रभाव से मुक्त करने का उपाय ढूंढ लिया, स्वयं संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया और सबका उद्धार करने लगे। तबे निज भक्त कैला यतम लेच्छ आदि सबे एडाइला मात्र काशीर मायावादी। सब लोग अभी सन्यासी लोग भी चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण कर रहे थे, लेकिन अभी जो शंकराचार्य इनके कुछ निर्विशेषवादी अनुयायी जो थे वो अभी तक चैतन्य महाप्रभु की शरण नहीं ग्रहण कर पा रहे थे। और वो जो मायावादी थे, जब चैतन्य महाप्रभु अभी देखिए इन पंच तत्व का निरूपण चल रहा है, कविराज अभी तक चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी नहीं हुआ है, लेकिन कविराज गोस्वामी हमें उनके उनकी कृपा की महिमा बता रहे कि इन पांच तत्वों ने क्या किया हुआ है और उसमें से चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया हुआ है। और अभी जहां जहां तक वो उस प्रेम का समुद्र की बाढ़ नहीं पहुंच रही थी वहां तक गए, सन्यासियों को पकड़ा, उनको उन्होंने शरण ली चैतन्य महाप्रभु की। लेकिन अभी जो कुछ लोग बचे हुए थे अभी भी शंकराचार्य के मायावादी अनुयायी, वो लोग अभी तक शरण नहीं ग्रहण कर रहे थे। वो लोग कैसे शरण ग्रहण करे चैतन्य महाप्रभु की, उसका अभी वर्णन कविराज गोस्वामी करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अभी संन्यास ग्रहण कर लिया है और संन्यास लेने के पश्चात जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन जाते जाते महाप्रभु वाराणसी से होके गुजरते हैं। तो मायावादी सन्यासी जो दार्शनिक थे वहां पर वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। और वो निंदक लोग कहते हैं कि ये देखो एक ऐसा सन्यासी है, ये सन्यासी होकर भी वेदांत के अध्ययन में रुचि नहीं लेता, लेकिन ये भावुक तरीके से नगर कीर्तन केवल करते रहता है, केवल भावुकों के साथ ही घूमता रहता है। इस प्रकार से वाराणसी के मायावादियों की निंदा की उपेक्षा करते हुए चैतन्य महाप्रभु मथुरा की ओर चले जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते। लेकिन मथुरा जाने के पश्चात, मथुरा का दर्शन करने के पश्चात महाप्रभु पुनः वापस वाराणसी में आते हैं। वाराणसी में किसके घर में रहते हैं महाप्रभु? काशी ते लेखक शूद्र श्री चंद्र शेखर तार घरे रहिला प्रभु स्वतंत्र ईश्वर। चैतन्य महाप्रभु स्वतंत्र ईश्वर है, कहां पर भी रह सकते थे, लेकिन एक शूद्र भक्त था श्री चंद्रशेखर आचार्य, उनके घर में चैतन्य महाप्रभु रहा करते थे। लेकिन महाप्रभु प्रसाद उनके घर में नहीं लिया करते थे, केवल रहने के लिए वो घर था। प्रसाद महाप्रभु लेते थे तपन मिश्रा इनके घर पे। तपन मिश्रे रे घरे भिक्षा निर्वाहन सन्यासी रे संग नहीं माने निमंत्रण। सैद्धांतिक तौर पर चैतन्य महाप्रभु जो है वो तपन मिश्रा इनके घर पे भोजन करते थे क्योंकि वो ब्राह्मण थे। अन्य सन्यासियों से मिलते जुलते थे लेकिन बाकी लोगों का प्रसाद के लिए आमंत्रण वो स्वीकार नहीं करते थे। और जब सनातन गोस्वामी बंगाल से चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आए थे, वो तपन मिश्र इनके घर पे ही वो मिले थे महाप्रभु को। और महाप्रभु ने लगभग दो महीने तक सनातन गोस्वामी को जो उपदेश दिए थे, जो शिक्षाएं दी थी, वो तपन मिश्रा इनके घर पे वाराणसी में ही दी थी। इति मध्ये चंद्रशेखर मिश्र तपन दुखी हा प्रभु पाए कैल निवेदन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे थे तो चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र दोनों अत्यंत दुखी होते हैं और तब वो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में एक निवेदन करते हैं। कते कशुनी ब प्रभु तुम्हारो निंदन ना पारि सहिते ए बे छाड़ी ब जीवन। वो कहे कि ये जो आपके आचरण का और आपके विचारों की आलोचना करने वाले जो मायावादी है, हम उनके भाष्य को अभी सहन नहीं कर पा रहे हैं, उससे उन वचनों को सुनने से अच्छा है कि हम लोग हमारा जीवन ही त्याग कर दें। तो जब तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य इनके वचनों को चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं तो थोड़ा मुस्कुराते हैं और मौन धारण कर लेते हैं। उसी समय
एक ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आता है। वह ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ता है और वह प्रार्थना करने लगता है और कहता है कि कृपया मेरा निवेदन आप सुनिए कि मैंने बनारस के मतलब वाराणसी के सारे सन्यासियों को अपने घर पे मैंने आमंत्रित किया है प्रसाद के लिए, कृपया आप भी उन सबके साथ मेरे यहाँ प्रसाद के लिए आइए। वो कहता है मैं जानता हूं कि आप अन्य सन्यासियों से कभी मिलते जुलते नहीं है, लेकिन कृपया आप मुझ पर थोड़ा दया दिखाइए और मेरे आमंत्रण को स्वीकार कीजिए। चैतन्य महाप्रभु हंसते हुए उस ब्राह्मण का आमंत्रण स्वीकार करते हैं। उन मायावादी सन्यासियों पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही शायद महाप्रभु उनका निमंत्रण स्वीकार करते हैं। अगले दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर गए तो उन्होंने देखा कि वाराणसी से बड़े 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 आए हुए सन्यासी उनके घर के अंदर बैठे हुए थे। और जो ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे सन्यासियों को देखा, चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको नमस्कार किया, अपना प्रणाम अर्पण किया और अपने पांव धोने के लिए चले गए। और पांव धोने के पश्चात वहीं पर चैतन्य महाप्रभु बैठ जाते हैं। और भूमि पर बैठने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने एक विशेष चीज की। क्या किया उन्होंने? उन्होंने करोड़ों सूर्यों के समान अपना तेज प्रदर्शित किया, क्योंकि जो सारे मायावादी सन्यासी है, जो हमने देखा ना कि ब्राह्मण की तरफ आकर्षित होते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने शरीर से एक दिव्य कांति उत्पन्न की, प्रकाश उत्पन्न किया, योग शक्ति का मानो वो प्रदर्शन कर रहे थे। जब सारे सन्यासियों ने चैतन्य महाप्रभु का जो तेजोमय शरीर देखा तब वो आकृष्ट हो गए, क्योंकि उनका साधारण आकर्षण इस प्रकार से होता ही है तेज के प्रति। और उन सब ने अपना आसन छोड़ा और सम्मान करने के लिए खड़े हो गए। प्रकाशानंद नामे सर्व सन्यासी प्रधान, प्रभु के कहिला की चूक करिया सम्मान। उन सारे सन्यासियों के मुखिया थे, उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती, वो अग्रणी थे और वो खड़े होकर सम्मान के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु को संबोधित करने लगे कि हे श्रीपाद, कृपया आप यहां आइए। आप उस अपवित्र स्थान में क्यों बैठे हैं? आपके शोक का कारण क्या है? आप यहां आइए। चैतन्य महाप्रभु जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं तो एक निम्न कोटि का सन्यासी हूं, आप जैसे महान लोगों के साथ बैठने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। किंतु प्रकाशानंद सरस्वती ने स्वयं चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़कर वो लेके आए और अपने सारे सन्यासी शिष्यों के बीच में उन्होंने उन्हें बिठाया। पूछिल तुमार नाम श्री कृष्ण चैतन्य केशव भारतीर शिष्य ताते तुम्हें धन्य। प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है और आप केशव भारती इनके शिष्य है, इसलिए आप बहुत धन्य है। और आप तो हमारे शंकर संप्रदाय के ही है और आप हमारे अभी गांव वाले हैं, वाराणसी में रह रहे हैं, तो फिर आप हमारे साथ क्यों नहीं आते, हमारे साथ क्यों नहीं मिलते जुलते, क्यों आप डरते हैं और हमसे दूर भागते हैं? आप तो अभी प्रश्न पूछ रहे। प्रकाशानंद सरस्वती इनका अभी पहला प्रश्न शुरू हो जाता है चैतन्य महाप्रभु के लिए। सन्यासी होया कर नर्तन गायन, भव कसबे संगे ला कर संकीर्तन। वो कहते हैं कि आप तो बहुत बड़े सन्यासी है, लेकिन भावुक होकर आप कीर्तन में लगे रहते हैं, केवल नाचते रहते हैं। वेदांत पठन ध्यान सन्यासी रा धर्म, तहा छड़ी कर के न भावुक के रा कर्म। जो सन्यासी होता है उसका कर्म होता है वेदांत पठन और ध्यान करना, ये सब छोड़कर, इस सन्यासी के कर्तव्य को छोड़कर आप इस प्रकार से एक भावुक नगर कीर्तन का कर्म क्यों कर रहे हैं? अभी चैतन्य महाप्रभु जवाब देते हैं। प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहर कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिले शासन। चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को कहते हैं कि हे मान्यवर, इसका कारण सुनिए। मेरे गुरुवर, मेरे जो गुरु है केशव भारती, उन्होंने मुझे कहा कि तू मूर्ख है और मूर्ख कहकर मेरी उन्होंने भर्त्सना की है। मूर्ख तुम्हें तुमार नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। मेरे गुरु ने कहा कि तू मूर्ख है और तेरा वेदांत के ऊपर कुछ अधिकार ही नहीं है, कृष्ण मंत्र ले और सदा
इस कृष्ण मंत्र जो सारे वेदों का सार है उसका तू निरंतर जप कर। कृष्ण मंत्र है ते होबे संसार मोचन, कृष्ण नाम है ते पाबे कृष्ण चरण। जो कोई कृष्ण मंत्र का उच्चारण करता है कि सारे संसार के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। जो कोई कृष्ण नाम लेता है तो भगवान कृष्ण के चरण वह बहुत जल्दी ही प्राप्त कर लेता है, ऐसा मेरे गुरु ने मुझे बताया। नाम विनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि कलयुग में भगवान नाम के कीर्तन को छोड़कर और कोई धर्म नहीं है, और यही समस्त वैदिक शास्त्रों का सार है, यही सारे वेदों का तात्पर्य है। एत बोली एक श्लोक सिखाईला मोरे, कंठे करी ए श्लोक करी हा विचारे। और यह सब बोल के कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति का वर्णन करने के बाद मेरे गुरु ने मुझे एक श्लोक सिखाया और मुझे कंठस्थ करवाया और कंठ में हमेशा मुझे धारण करने के लिए कहा। वो ये श्लोक उन्होंने कहा, हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कि कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए केवल हरिनाम हरिनाम और हरिनाम, इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं है। और चूंकि मुझे अपने गुरु ने ये आदेश दिया था और इसलिए इस पवित्र नाम का जप और मैं कीर्तन सदैव करता रहता हूँ, और इसका जप करते करते मैं हमेशा मोहित रहता हूँ। और मैंने देखा है कि इस पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए करते हुए मैं अभी पागल हो गया हूँ, और पागल बनने के पश्चात मैं पुनः अपने गुरु के पास गया और मैंने उन्हें निवेदन किया कि बा मंत्र दिला गोसाई कि बा तारा बल, जपीते जपीते मंत्र होइला पागल। की हे गुरु, आपने मुझे कौन सा मंत्र दिया? इस महामंत्र का कीर्तन जब मैं करता हूं तो मैं तो पागल हो गया हूं। जैसे ही गुरु ने यह सब सुना वो हंसने लगे और मेरे गुरु मुझे बोले, कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, यही जपे तार कृष्ण उपजये भाव। वो कहे कि ये जो भगवान कृष्ण के नाम का जो मंत्र और जप है, इसका स्वभाव ही यही है कि जो भी कीर्तन करता है वो तुरंत कृष्ण के लिए प्रेमपूर्ण भाव उसके मन में उत्पन्न हो जाते हैं। कृष्ण विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थ यार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। ये कृष्ण विषय जो प्रेम है ये परम पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ शिरोमणि है, और जिसके आगे जो चार पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष वो बन जाते हैं तृणतुल्य। मतलब वो तृणतुल्य का अर्थ होता है वो तृण के समान अग्नि तुच्छ बन जाते हैं। पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंदामृत सिंधु मोक्षादि आनंद यार नहीं एक बिंदु। ये जो पंचम पुरुषार्थ है भक्ति का, जो कृष्ण प्रेम पुरुषार्थ है वो प्रेमानंद अमृत सिंधु, वो प्रेम के आनंद का सिंधु है, और मोक्ष बाकी ये सब जो है वो उसके सामने एक बिंदु के समान जो है वो पाए जाते हैं, ऐसा है कृष्ण प्रेम का जो पंचम पुरुषार्थ। कृष्ण नामे ये आनंद सिंधु आस्वादन ब्रह्मानंद तारे आगे खातोद कसम। ये जो कृष्ण नाम का जो आनंद सिंधु है उसका जो कोई आस्वादन करता है वो आनंद के सिंधु में मानो गोते लगाएगा, और ब्रह्मानंद मतलब ब्रह्म में विलीन होने का जो आनंद है वो उसके सामने एक छिछले जल के समान है, इसलिए उसके पीछे हमने भागना नहीं चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु की इतनी मधुर वाणी उन सन्यासियों ने सुनी वो प्रभावित हो उठे और उनके चित्त में परिवर्तन आ गया, और वो अभी चैतन्य महाप्रभु से पुनः बात कर रहे हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि हे प्रिय चैतन्य महाप्रभु, आपने जो भी कहा वो सब सच है। जिसके ऊपर भाग्य की कृपा होती है उसे ही भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त हो सकता है। कृष्ण भक्ति कर इहाय सबार संतोष, वेदांत ना सुने के ने तारा की बात दोष। वो अभी दूसरा प्रश्न चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम कृष्ण की भक्ति में लगे हो ये तो बहुत आनंद की बात है, लेकिन तुम वेदांत क्यों नहीं सुनते हो, उसमें क्या दोष है?
वो अभी आप हमें बताइए। और चैतन्य महाप्रभु उनके सवाल का जवाब देते हैं। प्रभु कहे वेदांत सूत्र ईश्वर वचन व्यास रूपे कैले यहा श्री नारायण। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वेदांत सूत्र जो है वो ईश्वर के ही वचन है और जो भगवान नारायण के साक्षात अवतार है शक्त्यावेश अवतार श्री व्यासदेव जी इन्होंने ही तो वो लिखा हुआ है। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा कारणा पाटव ईश्वरे वाक्य ना है दोष। यही सब जो भी भगवान के द्वारा दिया जाता है उसमें ये चार दोष नहीं होते हैं। कौन से ये चार दोष? ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा और कारणा पाटव। इसे कहते हैं हमारी अपूर्ण इंद्रियां, अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित हो जाने के बाद हम गलतियां करते हैं और गलतियां करने के पश्चात हम लोग उन गलतियों को ढककर रखने के लिए दूसरों को फंसाते हैं। ये है ये चार दोष, क्योंकि भगवान की वाणी में ये चार दोष कभी नहीं होते हैं। उपनिषद सहित सूत्र कहे ए तत्व मुख्य वृत्ते से अर्थ परम महत्व। जो उपनिषद होते हैं उनके दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है एक मुख्य अर्थ और दूसरा होता है गौण अर्थ, मुख्य वृत्ति और गौण वृत्ति जिसे कहते हैं। तो ये आदि लीला का सातवें अध्याय का 108वां श्लोक जिसमें कविराज गोस्वामी उपनिषद के बारे में बताते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने 108 उपनिषदों की सूची दी गई है। तो यदि पूरे 108 उपनिषदों की सूची आपको चाहिए तो आदि लीला के सातवें अध्याय का 108वां श्लोक आपको खोलना होगा। और फिर गौण वृत्ति, तो कवि चैतन्य महाप्रभु उन प्रकाशानंद सरस्वती और सारे शिष्यों को कहते हैं कि एक होती है मुख्य वृत्ति और दूसरी होती है गौण वृत्ति। तो जो शंकराचार्य है उसमें इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश अनुसार ही उपनिषदों के वाक्यों को आच्छादित किया हुआ है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुसार जो परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है, जो छड़ैश्वर्य पूर्ण है, उनके तुल्य न तो कोई है न तो उनके कोई समान है। और ये सच्चिदानंद भगवान स्वरूप है और उनकी उनको जो है वो कुछ लोग उसे रूप को आच्छादित कर देते हैं और उनको वो निराकार के रूप में कहते हैं। ईश्वर तत्व यन ज्वलित ज्वलन जीवर स्वरूप यही छे स्फुल्लिंगर कण। जो भगवान है ये एक प्रकार से जो है वो प्रज्वलित अग्नि के समान है और जो जीव है वो एक स्फुल्लिंग के समान है, केवल एक चिंगारी के समान है। तो चिंगारी कभी बहुत बड़ी अग्नि नहीं रह सकती, उसी प्रकार से जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। जीव तत्व शक्ति कृष्ण तत्व शक्तिमान गीता विष्णु पुराण आदि तहादे प्रमाण। सारे गीता लो पुराण लो सब में हमें यही पाया जाता है कि जीव जो है वो शक्ति है और कृष्ण तत्व जो है वो शक्तिमान है। और इसलिए वो एक श्लोक बताते हैं जो विष्णु पुराण में आया है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या यथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते। तो आप लिख सकते हैं यदि आपके पास नोटबुक है तो इसमें तीन शक्तियों का वर्णन आता है। सबसे पहला कहते हैं कि विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, पहली शक्ति है भगवान की पराशक्ति, दूसरी होती है भगवान की क्षेत्रज्ञ क्या क्षेत्रज्ञ शक्ति और तीसरी होती है अविद्या शक्ति। पराशक्ति, क्षेत्रज्ञ शक्ति और अविद्या शक्ति, तो ये तीन भगवान की प्रमुख शक्तियां हैं। इसके सामने आप लिख सकते हैं जो पराशक्ति है जिसे हम लोग कहते हैं भगवान की अंतरंगा शक्ति, जो भगवान की क्षेत्रज्ञ शक्ति है वो है जीव शक्ति, मतलब जिसे कहते हैं हम लोग तटस्थ शक्ति, और जो अविद्या है वो है भगवान की बहिरंगा शक्ति जिसे हम लोग माया नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति और भगवान की तटस्थ शक्ति। तो इस प्रकार से ये सब चैतन्य महाप्रभु उन्हें बोलते हैं। और एक महावाक्य जो खास करके मायावादी हमेशा उच्चारण करते हैं उसके बारे में महाप्रभु बताते हैं। प्रणव से महावाक्य वेदेर निधान ईश्वर स्वरूप प्रणव सर्व विश्वधाम। कि ये जो वैदिक साहित्य है उसमें ओमकार का ध्वनि है वो प्रणव कहा जाता है। प्रणव सर्व वेदेशु गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं और आठवें अध्याय के तेरहवें श्लोक में गीता में भगवान ये भी कहते हैं कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। तो इस प्रकार से ये ओम जो है वो महावाक्य है, लेकिन ये सब 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 शास्त्रों का उद्देश्य वही है, लेकिन तत्वमसी ये जो है ये भी एक महावाक्य है, लेकिन वो सारे वेदों का एक अंग है। तो प्रणम प्रणव महावाक्य तहा करियाच्छदन महावाक्य करी तत्व मसीर स्थापन। ये जो शंकराचार्य आचार्य है उन्होंने ये जो प्रणव महावाक्य उसको आच्छादित कर दिया और तत्वमसी इस महावाक्य की स्थापना कर दी। तो इस प्रकार से मुख्य वृत्ति को छोड़कर उन्होंने गौण वृत्ति को स्वीकार कर लिया है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से जब चैतन्य शंकराचार्य के द्वारा की गई प्रत्येक सूत्र की व्याख्या की जब त्रुटियां दिखा दी, तब वहां पर उपस्थित सारे मायावादी सन्यासी आश्चर्य चकित रह गए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि हम जानते हैं कि ये जो सारा है ये वाणी का जाल शंकराचार्य जी ने अपनी कल्पना से खड़ा किया हुआ है, लेकिन हम उनके संप्रदाय के होने के कारण हमें इनका स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन हम भी इससे संतुष्ट नहीं है और हम देखना चाहते हैं कि इन सूत्रों को आप कितनी अच्छी तरीके से व्याख्या कर पाते हैं और इसलिए हमें आप वेदांत की व्याख्या ठीक से समझाइए। तो ये तीसरा प्रश्न अभी प्रकाशानंद सरस्वती और सारे सन्यासी चैतन्य महाप्रभु को जब पूछते कि आप सारे वेदों का सार हमें बताइए, तो सारे वेदों का सार हमें पता है तीन होता है, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। संबंध मतलब मेरा भगवान से क्या, मैं कौन हूं, भगवान कौन है और हमारे बीच में संबंध क्या है, वो है संबंध। दूसरा होता है अभिधेय, मतलब इस प्रकार से हमारा जो भगवान का साथ संबंध छूट गया है उस संबंधों को पुनः स्थापित करने के लिए क्या विधि है, उसे कहते हैं अभिधेय। और उसके आगे चल के जो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है वो जो इस अभिधेय का जो फल है उसे कहते हैं प्रयोजन। फिर चैतन्य महाप्रभु अभी संबंध ज्ञान सबसे पहले प्रदान करते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने मूल रूप में भौतिक जगत से दूर हैं और ऐश्वर्यों से सहित हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम जो है वो व्यक्ति के जीवन के परम लक्ष्य होने चाहिए। ये बताने के बाद वो अभिधेय ज्ञान बताते हैं, भगवत प्राप्ति हेतु ये करी उपाय श्रवणादि भक्ति कृष्ण प्राप्ति रस सहाय, कि श्रवण से प्रारंभ होने वाली जो भक्ति का मार्ग है वो भगवान तक हमें पहुंचा सकता है और वही एकमात्र साधन है। सेई सर्ववेदर अभिधेय नाम, इसका नाम है अभिधेय और जिसे साधना भक्ति के रूप में जाना जा सकता है। कृष्ण अभी वो प्रयोजन के बारे में बताते हैं, कृष्ण र चरण हय यदि अनुराग कृष्ण विनु अन्य रतार नाही रहे राग। यदि कृष्ण भगवत प्रेम में किसी व्यक्ति को यदि कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो अन्यत्र तार नाहे रहे राग, अन्यत्र बाकी किसी चीज में उस व्यक्ति को कभी राग यानी आसक्ति नहीं उत्पन्न हो पाएगी। पंचम पुरुषार्थ से ही प्रेम महाधन कृष्ण र माधुर्य रस कराय आस्वादन। भगवत प्रेम इतना उन्नत है कि मानव जीवन का इसे पांचवा लक्ष्य माना जाता है। जो चार पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनसे भी परे ये पांचवा उद्देश्य जिसे कहते हैं पुरुषार्थ शिरोमणि पंचम पुरुषार्थ। प्रेमा हैते कृष्ण हय निज भक्तवश, प्रेमा हैते पाय कृष्ण रस सेवा सुख रस। महान से महान परम भगवान भक्तिमय सेवा के कारण अत्यंत तुच्छ भक्त के भी वश में हो जाते हैं। भक्ति की ये ऐसी महिमा है कि भगवान अपने आप को इस भक्त को प्रदान कर देते हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं कि संबंध अभिधेय प्रयोजन नाम ए तीन अर्थ सर्व सूत्र पर्यवसान। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये तीन चीज जो है वो सूत्र के रूप में हमें देखनी चाहिए, संबंध अभिधेय और प्रयोजन। जब सारे मायावादी सन्यासियों ने संबंध अभिधेय और प्रयोजन के आधार पर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दी गई वेदांत की व्याख्या सुनी, तब वो विनीत होके बोलते हैं कि कृपा करके हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। तब चैतन्य महाप्रभु उनके सारे अपराधों को अभी क्षमा कर देते हैं और फिर वो सारे लोग कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगते हैं और सारा वाराणसी गांव सारे लोग वहां पर भक्त बन जाते हैं। यही पंच तत्व रूपे श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण नाम प्रेम दिया विश्व कैला धन्य। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों को इन पंच तत्वों को लेके पवित्र नाम का वितरण भगवत प्रेम जगाने के लिए सारे ब्रह्मांड में किया और इस प्रकार से सारा ब्रह्मांड धन्य हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का प्रचार करने के लिए इस प्रकार से सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी इन लोगों को वृंदावन भेज दिया, नित्यानंद प्रभु को बंगाल भेज दिया और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु उसके पश्चात दक्षिण भारत में गांव-गांव में कृष्ण नाम का प्रेम प्रचारण करने के लिए जाते हैं। एत कहिल पंच तत्वेर व्याख्यान इहर श्रवणे होय चैतन्य तत्व ज्ञान। इस तरह मैंने अभी पंच तत्व की सत्य व्याख्या की है और आप सभी के लिए जो इस व्याख्या को सुनता है उसका श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में ज्ञान बढ़ जाता है। इस प्रकार से हमारा पंच तत्व के बारे में सुनने से अभी ज्ञान बढ़ गया है और कविराज गोस्वामी यहाँ पर विराम देते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे अर आश चैतन्य चरितमृत कहे कृष्ण दास। इस प्रकार से हमारे चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 7 अध्याय पूर्ण हो जाते हैं। 7 अध्याय अभी तक केवल हमने जो 14 श्लोक पहले अध्याय में लिए थे उसका जो मंगलाचरण था उसकी विस्तार से अभी तक कविराज गोस्वामी इन्होंने व्याख्या की है। जो पहले 6 श्लोक थे उसमें चैतन्य निरूपण चैतन्य तत्व का निरूपण किया, उसके बाद वाले जो 5 श्लोक थे उसमें नित्यानंद तत्व का निरूपण किया, 6, 5, 11 हो जाते हैं। 2 श्लोक में अद्वैत तत्व निरूपण किया, 11 और 2, 13 हो जाते हैं और 1 श्लोक में पंच तत्व का निरूपण किया है। इस प्रकार से अभी ये मंगलाचरण पूरा हो गया है। अभी कविराज गोस्वामी बताएंगे कि ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ मैंने क्यों लिखा है। जो 8वां अध्याय जिसका शीर्षक है चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का जो है वो चैतन्य लीला वर्णन कारण, क्यों मैंने ये वर्णन किया हुआ है उसका वर्णन कविराज गोस्वामी करेंगे और वो हम सुनेंगे कल ठीक 5:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। और सुनकर बहुत आनंद हुआ कि कई सारे भक्त इस जो चैतन्य चरितामृत का कॉन्टेस्ट हमने रखा हुआ है CCC उसमें भाग ले रहे हैं। अभी तक लगभग 60 भक्तों ने इसमें अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है। आपने अभी तक नहीं किया है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें संपूर्ण केवल आपको आदि लीला के श्लोक और भाषांतर पढ़ना है और ये जो प्रवचन हम लोग सुन रहे हैं 21 दिन के लिए जो श्रृंखला है उसे आप केवल सुन सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं। उनके आधार पर केवल एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रूप में ये श्रृंखला रहेगी जिससे आप आदि का बहुत ही अच्छे से आस्वादन कर पाएंगे। ये केवल आदि लीला के ऊपर है और हमारे आदि लीला के पश्चात मध्य लीला के सत्र भी जो है वो चलते ही रहेंगे और उसमें केवल आपको 10 श्लोकों को जो है वो बायहार्ट करना याद करना है। उसके चलते भी हमने उन 10 श्लोकों को उनके भाषांतर के साथ आप सभी के लिए ऑलरेडी भेज दिया है। उन 10 श्लोकों को उच्चारण कैसे करना है उसको भी आप तक हमने पहुंचा दिया है। यदि आपको नहीं मिला है तो हमारे भक्त यहाँ पर लिंक के द्वारा आपको आप तक उसे पहुंचा ही देंगे। तो आप भाग लीजिए, आपके परिवार के सदस्यों को भाग लेने के लिए कहिए, आपके जो मित्र परिवार है जो चैतन्य चरितामृत लेके रखे हैं लेकिन अभी तक पढ़े नहीं है उनको भी आप प्रेरित किए कीजिए कि इस प्रकार से ये जो लॉकडाउन पीरियड है इसमें हम लोग चैतन्य महाप्रभु की कृपा को इस प्रकार से अनलॉक कर सकते हैं और जब अनलॉक करेंगे तो इसमें हमारा भी जो है वो लाभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत की, जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, जय श्रील प्रभुपाद की, जय।